प्रेरणादायक गीत हम सभी सुन रहे थे। ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी पूंजी पवित्रता है। बाबा ने हम सबको संगम युग पर पहला वरदान ही ये दिया, पवित्र बनो, योगी बनो। योग का आधार पवित्रता है। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में आते जितना मन बाबा की याद में एकाग्र हो जाता है, पवित्रता की परसेंटेज बढ़ती जाती है। हम सब ने बाबा का बनते ही यही शुद्ध संकल्प लिया कि हम बाबा आप जैसे पावन बन करके दिखाएंगे। बाबा तो परम पवित्र है, एवर प्योर है। हम आत्माएं इस चक्र में आने के कारण आधा कल्प पवित्र और आधा कल्प अपवित्र, आधा कल्प देही अभिमानी स्टेज में रहते हैं और आधा कल्प देह अभिमान के कारण विकारों के अधीन रहते हैं। संगम युग पर हम सबको बाबा पवित्र और योगी बनने की शिक्षाएं देते हैं और सभी ब्राह्मण आत्माएं यही लक्ष्य रख करके विशेष अटेंशन रखती हैं कि मुझे अपनी पवित्र जीवन पर दाग आने नहीं देना है। इसके लिए बाबा ने हम सबको ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के बंधन में बांधा है। तीन चीजें श्रीमत के अंतर्गत आती हैं। पहले दिनचर्या, फिर नियम और फिर मर्यादाएं। मैं समझता हूं इन तीनों से सभी ब्राह्मण आत्माएं भलीभांति परिचित भी हैं। कितनी सुंदर दिनचर्या बाबा ने हम सब ब्राह्मणों को बना कर दी है। अमृत वेले 4 बजे से रात को 10 बजे तक की दिनचर्या फिक्स है, और उस दिनचर्या के प्रमाण जो इसमें अलर्ट और एक्यूरेट रहते हैं, उनका तन और मन स्वच्छ स्वस्थ बनता जाता है। स्वास्थ्य के लिए भी ये दिनचर्या बहुत हेल्प करती है। अमृत वेले 4 बजे उठना और 4 से 8 बजे तक के समय में शरीर और आत्मा दोनों को शक्तिशाली बना लेना 4 घंटा। वर्तमान समय की भागदौड़ की जिंदगी में कई लोगों को ये 4 घंटे भारी लगते हैं, लेकिन अधिकतर ब्राह्मण आत्माएं जो 4 बजे से 8 बजे तक अपनी दिनचर्या पर ध्यान रखती हैं 4 घंटे, इसमें 2 घंटे चला जाता है शरीर को तैयार करना, एक्सरसाइज फ्रेश हो करके, और 2 घंटे के लिए पढ़ाई है, योग है, रूह रियान है। अगर इस तरह से दिनचर्या को बांट दिया जाए तो शरीर और आत्मा दोनों ही स्वस्थ और शक्तिशाली बन सकती हैं। हमारी इस जीवन के अंदर बाबा ने बहुत अच्छी तरह से पवित्र जीवन जीने के लिए ये विधियां बनाई हैं। दिनचर्या के अंदर समय पर सोना, समय पर खाना। गीता में भी भगवान ने कहा है, संयम नियम, और उसमें भी समय पर सोना, समय पर उठना, जिसको ही निद्रा जीत का टाइटल दिया है। निद्रा जीत का अर्थ ये नहीं है कि नींद ही नहीं करनी है, लेकिन समय पर सोया जाए, समय पर उठा जाए। तो 10 हमारी दिनचर्या के अंदर 10 तो बस, 10 के बाद कुछ नहीं हम कर सकते। लेकिन कई ब्राह्मण आत्माएं बहुत टाइम जगती हैं, रात को 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, तो उनका अमृत वेला कैसा होगा? होगा अच्छा। इसलिए कई लोग कंप्लेन करते हैं, अमृत वेले को शक्तिशाली कैसे बनाएं? अमृत वेले ही नींद आती है, माया आती है। लेकिन अगर इस दिनचर्या पर किसी का ध्यान है, समय पर सो जाए, समय पर अपने आप आंख खुलती है, बाबा अपने आप उठाता है, अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिक्स दिनचर्या अगर बने तो टाइम पर नहीं सोएंगे, रात को लेट भोजन करेंगे तो नींद बराबर नहीं आएगी, और नींद बराबर नहीं होगी तो अमृत वेला ठीक नहीं होगा। इसलिए हरेक के लिए दिनचर्या एक जैसी है। अगर मधुबन की दिनचर्या को कोई फॉलो करते हुए चले तो उसका बहुत सहज योगी जीवन बन सकता है। हम कहते हैं और कोई पुरुषार्थ करो या न करो, लेकिन बाबा की बनाई हुई दिनचर्या के ऊपर ध्यान दो। बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 1 मिनट भी अगर संकल्पों पर ब्रेक हो जाती है तो ये संकल्प बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। तो ये भी बाबा ने, दादियों ने बहुत अच्छा नियम बनाया। मैं देखता हूँ कई स्थानों पर, कई ऑफिसेज के अंदर भी लोग 1 मिनट के लिए रिकॉर्ड बजा के साइलेंस में हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अच्छी विधि है, बाबा ने हमारे कल्याण के लिए बनाई है, क्योंकि मन को कंट्रोल रखने की बात है। पवित्रता के लिए भी मन पर नियंत्रण चाहिए, नहीं तो मन जो कुछ देखता है, जो कुछ सुनता है, वही उसके मन में चिंतन के रूप में चलता रहता है। और मन में अगर इस प्रकार के व्यर्थ नेगेटिव संकल्प चिंतन चलते हैं, कंट्रोल नहीं है, तो स्वप्न भी वैसे ही आते हैं, फिर कर्म इंद्रियों के अंदर उत्तेजनाएं भी आती हैं। इसलिए हम सब के अंदर एक लक्ष्य रहे कि अमृत वेले से रात तक की दिनचर्या को जितना हम टाइट रख सके, उसमें अलर्ट रहें, एक्यूरेट रहें। तो ये दिनचर्या आपको बहुत सहज योगी जीवन का अनुभव कराएगी। फिर मर्यादाएं बहुत छोटी छोटी हैं, और उन मर्यादाओं पर अगर हमारा ध्यान है तो कभी भी युद्ध और मेहनत में समय नहीं जाता। कई ब्राह्मण आत्माओं को बहुत युद्ध वाली जीवन लगती है, चल रहे हैं ज्ञान में, लेकिन जैसे कोई जबरदस्ती चलाया जाए, मेहनत करनी पड़ती है, युद्ध करनी पड़ती है। कई प्रकार के ऐसे ऐसे संकल्प, विकल्प, संस्कार, स्वभाव जो अंदर अंदर से परेशान करते रहते, ऊपर से कहते हैं हम तो पवित्र और योगी हैं, लेकिन अंदर से उससे युद्ध करते करते थक जाते हैं, कहते हैं क्या करें, मन बड़ा चंचल है, मन उदास रहता है, एकाग्र नहीं होता, भटकता रहता है। इसलिए हम सबको ध्यान देना है कि बाबा ने जो हम सब के लिए दिनचर्या और मर्यादाएं बनाकर दी हैं, नियम बनाकर दिए हैं, उनमें मुझे किसी भी हालत में चलना है, कुछ भी हो जाए, उसके लिए प्राण जाए पर वचन न जाए, ये वचन है हमारा बाबा के साथ, इसको मुझे निभाना है। तो कुछ 10-12 बातें मैं आपके आगे रख रहा हूं, नोट करना कि ये अगर हमारी दिनचर्या में ध्यान पर रहती हैं, तो ये एक मर्यादाओं के रूप में हमारी सुरक्षा करती है। जैसे लक्ष्मण रेखा गाई हुई है और सीता की सुरक्षा के लिए उसने बहुत ध्यान से एक रेखा खींच करके दी, किस रेखा का तुम उल्लंघन नहीं करना, अंगूठा भी इससे बाहर नहीं निकालना, इसके अंदर रहोगे तो सेफ रहोगे, क्योंकि उनको आभास था कि कुछ छल हो रहा है। राम के रूप में, राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारना और पुकार करके ऐसी फीलिंग देना कि मैं बहुत संकट में हूं, सीता विचलित हो गई, लक्ष्मण पर अधिकार रख करके जोर दिया कि जाओ तुम, राम पर संकट आया, उसको मदद करो। जब उसने कहा कि ये छल है, ये कपट है, तो उसके ऊपर शक पैदा करने लगी और गलत शब्दों का प्रयोग किया, तो आखिर उसको जाना पड़ा। लेकिन जाने के पहले कहते हैं उसने लक्ष्मण रेखा खींच दी कि इसके बाहर नहीं निकलना। तो बाबा ने भी हम सबको मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा खींच करके दी है, इससे बच्चे बाहर नहीं निकलना, नहीं तो शोक वाटिका में जाना पड़ेगा, शोक वाटिका नहीं, दुख दर्द की महसूसता होगी, बाबा से बिछुड़ जाएगी आत्मा, साथ नहीं निभा सकेगी। इसलिए सच्ची सीताओं के लिए ईश्वरीय मर्यादाएं एक नियम और बंधन के रूप में हम सबके आगे बाबा ने रखी हैं। तो सबसे पहले दिनचर्या में अलर्ट रहना, एक्यूरेट रहना, उसमें अलबेलापन ना आए, ये भी एक मर्यादा के अंदर आ जाता है। दूसरी बात है कि ये मन और बुद्धि सदा बिजी रहनी चाहिए, क्योंकि इसको अगर फ्री छोड़ देंगे, इस पर अगर हमारा संपूर्ण नियंत्रण नहीं होगा, तो कुछ न कुछ मन के अंदर ऐसे ऐसे विचार आते रहेंगे जो परेशान करेंगे। इसलिए मन और बुद्धि को व्यस्त रखने की कला सीखना आवश्यक है। कई बार सेवाएं बहुत होती हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन स्थूल सेवाओं के साथ साथ जैसे दिन की दिनचर्या के लिए टाइम टेबल बनाया जाता है, ऐसे ही मन और बुद्धि का भी टाइम टेबल, कई बार बाबा ने कहा है इसका टाइम टेबल फिक्स करो, किस समय मुझे क्या करना है, मन से क्या सोचना है, उसको फ्री नहीं रखना। और इसके लिए बहुत से साधन हम सबके पास हैं। बाबा का साहित्य इतना अच्छा अच्छा है, जिसका अध्ययन करने का शौक है वो मन को फ्री होने नहीं देते। अगर फ्री होता है, कोई न कोई ऐसी अच्छी पुस्तकें, हमारे जगदीश भाई जी ने बहुत सारी पुस्तकें अपने ज्ञान की लिखी हैं। बाहर की पुस्तकें पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर पढ़ने का शौक है तो ज्ञानामृत है, कई ऐसी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, उनकी खूब अच्छी स्टडी की जाए। मेरा तो एक शौक है, हॉबी है, कुछ भी हो जब भी समय मिलता है तो पढ़ने का ही सारा दिन काम, लेकिन फिर भी अगर उससे मैं फ्री हो जाता हूँ तो कोई भी मास की ज्ञानामृत का एक लेख भी मैं नहीं छोड़ता। कोई भी प्रकार का साहित्य अगर प्रिंट होता है तो मेरा लक्ष्य रहता है मैं इसको दो नजरों से देखूं। दो नजरों से देखता हूँ इस लकड़ी के लिए कि कोई भी ऐसी बात प्रिंट न हो, ऐसा कोई चीज न छपे जिसको लोग गलत दृष्टि से उठा लें, कुछ डिसर्विस हो जाए। उसके लिए कभी भी कुछ ऐसा छप भी जाता है, प्रिंट भी होता है, तो ध्यान जाता है, ध्यान खिंचवाता भी हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा ध्यान रहता है कि मेरी इसमें क्या क्या उन्नति है, मुझे इससे क्या होमवर्क मिल रहा है। कई बार ऐसा ऐसी बातें टच हो जाती हैं, मुरलियों से भी होती हैं, साहित्य से भी हो जाती हैं, जो एकदम चिंतन को दिशा मिल जाती है। और अगर छोड़ दिया जाए इसको, तो इसको दिशा ही इन मन क्या क्या सोचता है, कहाँ कहाँ भटकता है, किधर किधर जाता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए ध्यान रखें मन और बुद्धि को ज्ञान चिंतन स्वचिंतन में बिजी करें, पर चिंतन पर दर्शन में नहीं। कई लोग इसमें बिजी हो जाते हैं, छोड़ करके अपना काम धंधा बैठ के आपस में दो लोग मिल गए तो सारी बातें कारोबार की, सेंटर्स की, बहनों की, एरिया की, सब लेन देन शुरू करके अपने मन की बातों को दूसरों को सुना करके उसके मन को भी दूषित कर देते हैं। उसके मन में भी कई प्रकार के विचार डाल करके उसके अंदर भी उछल पुथल कर देते, उथल आ जाती है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि हम सब एक स्लोगन परमानेंट याद कर लें, अगर इस ब्राह्मण जीवन में मुझे अपनी उन्नति करनी है तो स्वचिंतन ही उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। ये अंडरलाइन हर एक के आगे होना चाहिए कि अगर मैं आत्मा पर चिंतन कर रही हूँ, पर दर्शन कर रही हूँ, तो मेरी कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती, सदा गिरावट की ही ओर जाएंगे। क्योंकि हर आत्मा के अंदर कोई न कोई ऐसी बातें हैं, संस्कार हैं, स्वभाव हैं, पुराने पिछले जन्मों के हिसाब किताब हैं, कोई कोई चुप तो कर रहे हैं, कोई बना भी रहे हैं। अगर मैं आत्मा उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेती हूँ, माना मेरा भी उसके साथ हिसाब जुड़ जाता है, बनने लगता है। इसलिए मन और बुद्धि को पर चिंतन और पर दर्शन से फ्री रख करके केवल मुझे स्वचिंतन और शुभ चिंतन करना है। शुभ चिंतक स्थिति भी पवित्रता की एक श्रेष्ठ स्टेज है। अगर कोई बहुत दूसरी बातों का चिंतन करता है, माना उसके अंदर पवित्रता का अंश है, भले वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, पवित्र जीवन जी रहा है, लेकिन अगर उसके चिंतन की धारा नेगेटिव की तरफ जा रही है, व्यर्थ की तरफ जा रही है, माना उसकी प्योरिटी की डिग्री, प्योरिटी की परसेंटेज डाउन हो रही है। जिस रूप में बाबा हमको प्योर बना रहा है, संपूर्ण पावन बना रहा है, उसमें हमारे विचारों की शुद्धता भी बहुत सहयोग देती है। इसलिए कभी भी कोई की भी कमियों पर मेरा ध्यान न जाए, क्योंकि ये अवगुण दृष्टि भी किचड़े को नोट करना है, किचड़े को जमा करना अपने पास। तो किसी के भी अवगुण कैसे भी हों, लेकिन बाबा ने मुझे कहा है बच्चे तुम किसी के भी अवगुण मत देखो, तुम्हें मैंने ये जवाबदारी नहीं दी है, तुम केवल अपने गुण और दूसरों के गुण देखो और विशेषता देखने का चश्मा पहनो। चश्मा पहनना, एक बार बाबा ने बड़ी रमणीक मौली चलाई थी कि एक मजबूरी भी है और एक फैशन भी है चश्मे का। मजबूरी है, दिखाई नहीं देता है कुछ भी, तो क्या करेंगे, चश्मा पहन लेंगे। और फैशन भी है, लोग कलर चश्मा पहन करके आज कैसे कैसे चश्मे की फैशन चल गई। तो बाबा हम सबको कहता है बच्चे हरा चश्मा पहनने से सब हरा दिखने लगता, लाल चश्मा पहनने से सब लाल लाल दिखने लगता, तुम विशेषताओं को देखने का चश्मा पहन लो। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में जितनी आत्माएं आई हैं, हमारा इन्हीं से संपर्क संबंध अधिक है, इसमें हर आत्मा विशेष आत्मा है, बहुत सारी क्वालिटी है उसके अंदर। और बाबा ने एक बार कहा था कि अगर किसी में 36 में से 35 अवगुण है लेकिन एक भी गुण है, विशेषता है, और भगवान की नजर उस पर पड़ जाती है, तो उस विशेषता से वो अपना कार्य सतयुग की स्थापना का करा लेता और उसमें सब विशेषताएं स्वतः आ जाती हैं। एक विशेषता भी अगर कोई बाबा के कार्य में लगा देता है तो सब विशेषताएं बाबा उसके अंदर भर देता और उसकी कमियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो जब बाबा एक विशेषता को देख करके इतना बड़ा कार्य करा रहा है स्थापना का, फिर हम किसी की विशेषताओं को क्यों नहीं देख पाते, अवगुणों को ही क्यों नजर डालते हैं? और अगर किसी की कमियों को अवगुणों को कोई नोट करता रहेगा तो कभी भी उसका योग लगेगा ही नहीं, उसकी आत्मा स्वच्छ बनेगी कैसे? इसलिए बहुत बहुत अंडरलाइन करना है कि मुझे किसी की भी कमी कमजोरियों को नहीं देखना है। सबकी विशेषताएं हैं और हर आत्मा का विशेष पार्ट है, विशेष आत्मा बनने वाली विशेषताओं को देखती है। तीसरा एक ध्यान जब से बाबा ने अपना बनाया है, सबसे ऊंची बात जो सारी दुनिया की नजरों में है, ब्रह्मा कुमारी कैरेक्टर बिल्डिंग का काम करती, चरित्र निर्माण का काम करती हैं। ब्राह्मण जीवन में किसी के भी चरित्र पर दाग नहीं आना चाहिए। चरित्र हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। बाबा के हर एक बच्चे को चरित्रवान बन करके रहना है, तभी बाबा को नाम, बाबा को प्रत्यक्ष कर सकता है। और चरित्र के अंदर तीन बातें बहुत अंडरलाइन करनी है। एक तो उसका चरित्र अच्छा माना जाता है जिसकी दृष्टि वृत्ति बहुत शुद्ध और पवित्र होती है, चंचल नहीं है, दैहिक नहीं है, वो चरित्रवान कहा जाता है, इसका चरित्र बड़ा अच्छा है। जिसके अंदर बहुत शीतलता है, सरलता है, कोमलता है, वो चरित्रवान माना जाता है। अगर क्रोध है, थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा आ जाता है, उसके चरित्र को अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए उत्तेजनाएं हमारी समाप्त हो जाएं, हम सहज सरल योगी बने तो हम चरित्रवान कहला सकते हैं। और तीसरा इसके अंदर आता है वृत्तियां अनासक्त चाहिए। अगर वृत्तियों के अंदर बहुत आसक्तियां हैं और ये एक भावना बनी रही, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो ये भी एक लोभ वृत्ति हमारे चरित्र को दागी बनाती है। इसलिए ये तीनों बातों पर जिसका ध्यान है ब्राह्मण जीवन में, एक अपनी दृष्टि और वृत्ति पर, वो बहुत शुद्ध और आत्मिक हो, रूहानियत से परिपूर्ण हो, रूहानी दृष्टि पवित्र आत्मा की निशानी है। फिर उसके बाद उसकी भावनाएं, उसकी सरल नेचर, उसकी मिलनसार नेचर, बहुत शीतल नेचर उसके चरित्र को दर्शाता है। और फिर अगर वृत्तियां बिल्कुल अनासक्त हैं, कोई भी चाहनाएं ऐसी नहीं है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो भी वो चरित्रवान कहलाता है। इसलिए ईश्वरीय मर्यादाओं में बाबा ने हम सबको विशेष अटेंशन खिंचवाया है। एक एक ब्राह्मण आत्मा का चरित्र बहुत ऊंचे से ऊंचा होना चाहिए। चरित्रवान बच्चे ही बाबा का नाम बाला कर सकते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में हम सबको विशेष ध्यान देना है कि हमारे चरित्र पर कोई भी अंगुली न उठाए, चरित्र बड़ा अच्छा हो। इसके लिए पवित्रता की बहुत सारी बातें हैं, वो बाद में बताएंगे आपको। लेकिन नियम और मर्यादाओं के अंदर चौथी बात आती है, एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, एक वृत्ता स्थिति। हम सब की आंख किसी भी देहधारी में न जाए, चाहे वो कितना भी रूपवान, चाहे वो कितना भी धनवान क्यों न हो। संगम युग पर सर्व संबंध मेरे एक बाबा के साथ हैं। भले हमको बाबा ने संबंध छुड़ाए नहीं है, लौकिक संबंध निभाने के लिए कहा है, सबके साथ संबंध निभाते हुए वृत्तियां वहां अटकी हुई न हो। निभाना सबके साथ है, लेकिन किसी के साथ अटैच नहीं रहना है। बाबा मेरा एक संसार है, जिसने दिल से बाबा को दिलवर माना, बाबा को अपना संसार बनाया, इस मर्यादा के अंदर रहा कि एक में मेरी आंख जाएगी, उसको बाबा कई बार टाइटल देते हैं, ये पतिव्रता और पिताव्रता है। वो ब्राह्मण आत्मा वफादार आत्मा है। पति पत्नी के संबंध में, लौकिक में भी, अगर किसी में, किसी दूसरे व्यक्ति में आंख चली जाती है तो कहते हैं वफादार नहीं है। बाबा भी हम सब ब्राह्मण आत्माओं को तीनों टाइटल देकर कहता है, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार। बाप के रूप से मेरे हर बच्चे को आज्ञाकारी बन करके रहना, जो बाबा ने कहा हाँ जी। शिक्षक के रूप में हम सबको बहुत ईमानदारी से पढ़ना है, आनेस्ट होकर के रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। और सतगुरु और साजन के रूप से बहुत वफादार, फरमानवरदार बन करके रहना है। जो फरमान के लिए कहते हैं, एक बार आप सबको पता होगा, जो पुराने हैं, मुरली के अंदर वरदान के जगह पर फरमान हमने लिखना शुरू किया, तो उसकी बहुत रिएक्शन आई थी, बताता हूँ फिर क्या आई थी। जैसे अभी तक वरदान चल रहे हैं, तो 4-5 साल तक जब वरदान हमने मुरली के नीचे लिखे, तो ऐसे मुझे ही संकल्प आया कि बहुत समय हो गया है, अब वरदान को बंद करके यहाँ पर फरमान शुरू कर देते हैं। तो फरमान शब्द से ही विदेशी लोग घबरा गए हैं, कहने फरमान माना ऑर्डर, और अगर हमसे नहीं हुआ तो धर्मराज मेरी कबर ले लेगा। इसलिए सब डरने लगे, भाई ऐसा बड़ा शब्द यूज नहीं करो। दो तीन मास में ही दादी ने कहा इसको बंद करो, अभी नहीं भेजना किसी को, वरदान भेजो। वरदान सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो बाबा का फरमान कभी भी सूक्ष्म में भी उल्लंघन न हो, और वफादारी इतनी कि एक तुझे ही देखता रहूं, तेरे सिवाय मेरा और कोई नहीं संसार में, भले कितना भी प्रिय क्यों न हो, सबके साथ निभाते भी एक में आंख रहे, एक के सिवाय दूसरे में आंख न जाए, तब बाबा कहेगा ये वफादार है। तो ऐसे संबंधों में वफादारी आ जाए, ऐसा बाबा को एक व्रता बच्चा चाहिए। ये एक बाबा ही संसार है। संसार में दो ही चीजें, एक व्यक्ति एक वस्तु, और दोनों प्राप्तियां बाबा से मुझे जितनी हो रही, इंसान मुझे क्या कराएगा। बाबा से सब प्राप्तियों का अनुभव करना, ये है एक व्रता बनना। तो ये हमारे लिए मर्यादा है। ब्राह्मण आत्माएं चाहे वो समर्पित हैं, चाहे वो प्रवृत्ति वाली हैं, हर एक के लिए बाबा ने एक जैसी मर्यादा बताई है। नंबर आप लगाना, मैं नहीं लगाता, ठीक। फिर उसके बाद है कि जितना जितना हम बाह्य मुक्ता से न्यारे बनते जाएंगे, अंतर मुक्ता की गुफा में रहने का अभ्यास करेंगे, तो अंतर्मुखी सदा सुखी। कोई इस ब्राह्मण जीवन में सदा सुखी जीवन का अनुभव करना चाहता है तो बाह्य मुक्ता को बंद कर दे। न कोई बाह्य मुक्ता में आकर के देखना है, न हंसना है, हंसी मजाक करनी है, न बोल चाल ऐसा हो जिससे कोई भी आत्माएं मेरे बोल से डिस्टर्ब हो जाएं। बाह्य मुक्ता बहुत नुकसान करती है। और बाह्यमुखी समझते हैं हम तो मजाक मजाक में कहते हैं, लेकिन कई बार वो हंसी मजाक भी बहुत संबंधों को बिगाड़ देती है। इसलिए बहुत ध्यान रखना कि मुझे गुफा में रहना है। बाबा ने हमें तपस्वी बनाया है और हमें अंतर्मुखता की गुफा दी है। अंदर चले जाओ, अंदर का जो मुख आत्मा का है उसको देखो। तो अंतर्मुखी बनते जाएंगे तो बाहर के वातावरण से, उसके प्रभाव से मुक्त रहेंगे। नहीं तो अधिकतर कई ब्राह्मण आत्माओं की कंप्लेन रहती है कि हमने ऐसा चित्र देखा, ऐसा फोटो देख लिया, ऐसा इंटरनेट पर देख लिया, ऐसे सीन देख ली, तो मेरे संकल्प पवित्र बन गए, अपवित्र हो गए, स्वप्न खराब हो गए, कोई भी प्रकार के अशुद्धता आ गई, उसका मूल कारण है बाह्य मुक्ता। हंसना, बहलना, देखना, सुनना, बोलना, जिसके कारण आत्मा की पवित्रता की स्टेज कम हो जाती, इसलिए अंतर्मुखी बन करके रहना है। तीन चार आदतें ऐसी हैं जो ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है, और एक ऐसी आदत जिसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल मिसाल आपको सुनाऊंगा। बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी शक का शिकारी नहीं बनना। शक का शिकारी समझते हैं, बहम की, बहुत बहम अंदर हो जाता, अपने प्रति, परिवार के प्रति, बहनों के प्रति, किसी भाई के प्रति या कोई के प्रति भी बहम अगर हो गया, अनुमान हो गया, तो कभी भी उसकी कोई दवाई नहीं की जा सकती। ला इलाज बीमारी है बहम की, शक की। और अगर हमारे आपसी संबंधों में शक प्रवेश हो जाए तो शांति सेकंड भी नहीं रह सकती। बहुत ध्यान देना पारिवारिक जीवन में कभी भी शक उत्पन्न न हो, और विशेष करके पति पत्नी के संबंध में अगर ये माया घुस गई तो वो संबंध कभी भी टिकाऊ नहीं रह सकते। मिसाल बताता हूं मैं आपको, एक एक बहुत सुंदर परिवार, बहुत सुंदर माना बहुत बाबा का अनन्य परिवार। पति पत्नी दोनों ही इतने बाबा के पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे थे। पति एक बहुत बड़ी पोस्ट पर था, ऑफिसर था, और पत्नी इतनी निश्चय बुद्धि थी जो उसने घर में गीता पाठशाला चलाई, बहुत प्यार से घर में केंद्र खोल करके उमंग उत्साह से खूब सेवाएं कर रहे थे। अचानक मैं एक बार उसके घर में भी गया, गीता पाठशाला में भी गया, मिला भी। थोड़े दिन के बाद जब पति रिटायर हुआ, पहले बहने उसको बुलाती रहती थी, भाई जी आओ, तो टाइम नहीं मिलता था। फिर सोचा उसने कि अभी भाग्य बनाने का समय मिल गया, अभी तो नौकरी का झंझट बंधन मुक्त हो गया मैं, तो गाड़ी थी अपनी, समय था, अनुभव भी था, भावना भी थी बहनों में, तो जब भी बहनों ने बुलाया, फोन किया, हाजिर हो गया, सेवा में खूब सहयोगी बन गया। और जब भी बुलाएं वो हाजिर हो जाए, धीरे 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 वो माता जी को सक बैठ गया कि अभी क्या हो गया इनको, बहन जी बुलाती इनके पीछे पीछे बार बार, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जाए, कहीं इनके संबंध में कुछ है तो नहीं। ऐसा थोड़ा सा शक अंदर घुस गया, और वो शक इतना बड़े रूप में, जैसे बाबा कहते ना कैंसर की तरह, घुन की तरह अंदर अंदर घुस गया, बता भी नहीं सकते किसी को, सुना भी नहीं सकते, लेकिन अंदर अंदर से उसकी सारी खुशी गायब हो गई, चेहरे की रौनक उतर गई, इतना सुंदर चमकता हुआ ब्रह्मा कुमारी का जैसे फेस माता का। और जब मैं दोबारा उसके पास गया तो बिल्कुल चेहरे पर रौनक नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई उमंग नहीं। घर में गीता पाठशाला धीरे धीरे ठंडी पड़ गई, क्योंकि जब निमित्त डाउन हुआ तो उसके पास आने वाली माताएं भी ठंडी हो गई, और भाई के ऊपर ये अभी बंधन आने लगा कि अभी तो मुझे कैसे जाऊं मैं, जब इतना डिप्रेशन में जा रही है। बेचारा, उसकी भी धीरे धीरे सेवाएं छूटने लगी, उसको खुश करने के लिए कहता अच्छा नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं। इतना बड़ा एक घर के अंदर नेगेटिव माहौल, नेगेटिव वातावरण क्रिएट हो गया, जो उसको संभालना बहुत बहनों का, दादियों का, हम लोगों का, बहुत सबका समय गया होगा। बहुत समझाने का प्रयास, नहीं समझ में आया उसको। धीरे 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 करीब 3-4 साल के बाद अब थोड़ा लेवल आया है, अब थोड़ा सा रौनक आई, क्योंकि जब देख लिया अभी जाता ही नहीं सेंटर पर, उसको जाना बंद कर दिया, तो थोड़ा सा खुशी हुई है। तो शक की बीमारी अगर परिवार के बीच में आ गई, चाहे पत्नी की पति में शक, चाहे पत्नी पति का पत्नी में शक, क्या होगा? शांति होगी, खुशी होगी, योग लगेगा, विचार करना। विश्वास एक बहुत बड़ी संपदा है, कभी भी आपसी विश्वास में खटास नहीं आनी चाहिए। एक दूसरे में फेथ रख करके, विश्वास रख करके, और कर्मों के गति को समझते हुए, कर्मों की बहुत गहन गति है। अगर कोई आत्मा किसी कारण से कभी कोई इधर उधर भटक भी गई, तो मुझे उसको योगदान देना है, शुभ भावनाएं रखनी है, उसके प्रति नेगेटिव चिंतन नहीं करना है, नहीं तो हमारे नेगेटिव चिंतन से वो और भी पक्का हो जाता है। अगर हम अपने इस चिंतन पर ध्यान दें कि बाबा ने मना किया है, बच्चे किसी पर भी शक की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर आत्मा श्रेष्ठ है, महान है, दिव्य है, इसलिए मुझे तो उसकी विशेषताओं को देखना है। तो शक के शिकारी मत बनना, अगर हो किसी के पास तो बाबा के घर में छोड़ करके जाना। दूसरा एक संस्कार जिद का सबसे नुकसान करता है। ब्राह्मण परिवार में कई आत्माएं जिद्दी स्वभाव की, और जिद है अगर तो जरूर सिद्ध करेगा, उसकी निशानी दिखाई देती है, सिद्ध करेगा अपने आप को, और जहां सिद्ध किया जाता है वहां पर सत्यता नहीं होती। कभी भी सच्चाई को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बाबा कहते हैं जो सच्चा है वो धूल में भी छिप नहीं सकता है, वो तो एक सूर्य की तरह है, उसकी सत्यता अपने आप बाहर आएगी। इसलिए सच्चे हो तो अंदर की खुशी की डांस करते रहो, सच तो बिठो नच। सिद्ध क्यों कर रहे हैं? और अगर कभी कोई बात कहनी भी है, करनी भी है, बतानी भी पड़ती है, तो बाबा ने सिखाया है सत्यता के साथ बहुत सभ्यता चाहिए, सभ्यता पूर्वक वार्तालाप। मैं सच्चा हूं, मुझसे झूठ सहन नहीं होता। बाबा की इस पर भी बहुत अच्छी मुरली चली है, ध्यान होगा कि अगर तुम सच्चे हो और वो झूठा है, उस झूठे के ऊपर तुम सच्चे को क्रोध आता है, तुम क्रोध कर रहे हो, वो झूठ बोल रहा है, दोनों में गलत कौन? ध्यान देने की जरूरत है। अगर वो झूठा है तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप गुस्सा कर रहे हो तो आप उससे भी ज्यादा झूठे हो गए। इसलिए अगर सच्चा हूं तो सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, बहुत शांति से बहुत सभ्यता पूर्वक वार्तालाप करके अपने आप को सेफ रखो, नहीं तो चुप हो जाएं, सब सिद्ध हो जाएगा। इसलिए जिद्द और सिद्ध का स्वभाव ब्राह्मण जीवन में प्रतिज्ञा के रूप में अच्छा है, दृढ़ता के रूप में अच्छा है, लेकिन विकार के रूप में अगर जिद्द किसी बात में किया जाता है तो वो विकार कहलाता, बुराई है। एक चूहिया ब्राह्मण जीवन में बहुत प्रवेश करती है और वो है ईर्ष्या की। कोई भी ब्राह्मण आत्माएं आगे बढ़ने लगेंगी तो कईयों को सहन नहीं हो पाता है, और उसको किस तरह से डाउन किया जाए उसकी बहुत प्लानिंग चलती है अंदर अंदर। क्या क्या प्लानिंग चलती है? कोई भी छोटी मोटी उसकी कमी, कमजोरी, संस्कार, स्वभाव कहीं से भी दिखाई दिया तो उसको बड़े रूप में वर्णन करके उसको बड़ों के दिल से गिराने का प्रयास किया जाता है, और ये प्रयास अधिकतर आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देता, उसकी बिल्कुल स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं ये भी एक काली आग है, ईर्ष्या काली आग है, और इस अग्नि में जलने वाली आत्माएं कभी भी पवित्रता की संपूर्ण स्टेज का अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए ध्यान रखना कि ईर्ष्या किस चीज की हमको करनी है, क्या मुझे चाहिए। कोई के पास अच्छी गाड़ी है, कोई के पास अच्छा मकान है, कोई ने भाग्य से या ठगी से कुछ भी धन इकट्ठा किया, कुछ भी किया है, मैं उससे भेंट क्यों कर रहा हूं? हर आत्मा का भाग्य अपना अपना है और उसके किसी कर्मों का फल वो खा रहा है, मैं उससे ईर्ष्या करके अपनी खुशी क्यों गायब करूं? कई बार अपने दुख में इतना दुख नहीं होता, लेकिन दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो जाता व्यक्ति। इसलिए बहुत ध्यान देना है कि मुझे जितना भगवान ने दिया उतना बहुत कुछ दिया है, और हर एक को एक जैसा तो मिलेगा भी नहीं। हर एक का भाग्य, हर एक का पार्ट, हर एक की तकदीर, हर एक का हिसाब किताब, कितने समय से उसका चलता आ रहा है। इस जन्म में भले आपको दिखाई देता है ठगी करके पैसा कमा के लाया, ये झूठ करके ले आया, लेकिन कुछ उसका पिछले जन्मों का हिसाब किताब, जिससे ठगी चोरी करके भी उसको मिल गया। मुझे ये कर्म नहीं करना है कि मैं किसी से भेंट करके, ईर्ष्या करके अपने को दिखावा करूं मेरे पास इतना है। तो जितना है, दो रोटी खाना है, प्रभु के गुण गाना है, अपनी संपत्ति से संतुष्ट रहना है, दूसरे की संपत्ति को देख करके मुझे भेंट नहीं करनी। ईर्ष्या बहुत बड़ा शत्रु है ब्राह्मणों का। साथ साथ सूक्ष्म लगाओ, चेक करना, लगाओ बदबू पैदा करता है। कोई भी चीज अगर मान लो आप पकाने जा रहे हैं, लग गई तले में, तो उसकी जो खुशबू निकलेगी वो वातावरण में बताएगी जल गया ये। इसलिए किसी से भी अगर लगाव हो गया, बहन बहन का भी हो गया, संबंधों में भाई भाई का भी हो गया, दैहिक लगाव हर स्थान पर देह अभिमान की बदबू पैदा करता है। कोई कितनी भी आत्माएं विशेष हों, मुझे उनसे दैहिक लगाव नहीं रखना है। आत्मिक प्यार है। मैंने एक थोड़े दिन पहले यहाँ एक क्लास लिया था, संबंधों का मनोविज्ञान। संबंधों का भी मनोविज्ञान है। एक आजकल के संबंध कैसे हैं? व्यवहारिक, जैसे व्यवसायिक संबंध है। बिजनेसमैन के आगे ग्राहक आ जाएगा, बहुत प्यार से मिलेगा, बहुत प्यार से बात करेगा, उसको खिलाएगा पिलाएगा, संबंध बना लेगा, लेकिन वो बाहर चला गया तो पूरा हो गया व्यवहारिक संबंध। फिर वैचारिक संबंध, विचार किसी के अच्छे हैं, लिख दिया अच्छा लेख, अच्छा लग गया, उसके ऊपर आत्मा प्रभावित हो गई, बहुत अच्छे विचार वाला। गांधी जी बड़े अच्छे विचार वाले थे, विवेकानंद के बड़े अच्छे विचार, विचारों का प्रभाव पड़ रहा, उसे संबंध जुड़ रहे हैं। भावनात्मक विचार, भावनाएं किसी के साथ बैठ गई, जुड़ गई, उसके साथ जुड़ गए हम, बह गए उसके साथ। लेकिन इन सभी संबंधों में दुख है, इसलिए बंधन बन गए कलयुग के अंदर। चाहे व्यवहारिक हैं, चाहे वैचारिक हैं, चाहे भावनात्मक हैं, ये सब संबंध दुख देने वाले हैं। इसलिए बाबा कहता, संबंध तो शुरू से चलते आए, लेकिन वो संबंध आत्मीय संबंध थे और ये संबंध देह से संबंधित हो गए। इसलिए अगर इस संबंधों में सुख का अनुभव करना है तो आत्मीय संबंध, जिसमें भावनाएं हैं, स्नेह है, सब कुछ समाया हुआ है, लेकिन बंधन नहीं है। संबंध हमें बंधन में न बांध दे, बहुत ध्यान रखना। इसलिए लगाव मुक्त होकर के संगम पर मैं आत्मा रहूं, किसी के लगाव के बंधन में न आ जाऊं। लगाव होगा तो झुकाव होगा, प्रभाव होगा उस आत्मा का, और फिर जब प्रभाव किसी का चलता है तो दबाव डालने लगता है, अपना दबाव करता है, ये करो ये नहीं करो, यहां जाओ यहां नहीं जाओ। इसलिए बाबा ने हम सबको इस बंधन से मुक्त किया। इस बंधन से अगर हम सूक्ष्म में मुक्त हैं तो हम कहेंगे संपूर्ण पावन है। अगर जरा भी कहीं देह संबंध पदार्थ व्यक्ति वैभव कहीं पर भी बुद्धि बार बार खिंच रही है, जा रही है, माना कहीं न कहीं मेरा लगाव अभी तक लगा हुआ है, बंधन है, उड़ नहीं सकेंगे, सेकंड में बाबा के पास नहीं जा सकेंगे, बहुत महीन चेकिंग है। और अगर ऐसी चेकिंग आप यहाँ पर कर ले एकांत में मधुबन के भट्टी में, तो बहुत से बंधनों को आप ऐसे काट देंगे, ये तो बेकार के बंधन है, सब हल्के हो जाएंगे, उड़ने लगेंगे, लाइट हो जाएंगे। संबंधों में रहते हुए जितना प्यारे हैं हम सबके, उतना न्यारे हैं। जैसे बाबा का बैलेंस हम सब देख रहे हैं, बहुत प्यार का सागर है। जब बच्चों की महफिल में आता है तो ऐसे लगता है अभी जाएगा ही नहीं, इतना प्यारा है। और जब जाना होता है तो कोई की सुनता नहीं, देखता नहीं, माइक लगाए या नहीं लगाए, न्यारा हो जाता है। बाबा एकदम न्यारे प्यारे का पाठ हम सबको पढ़ा रहा है। सबके बीच में हैं हम, सबके साथ मिले जुले हंसे बहले सब करो, प्यारे बन करके रहो, लेकिन न्यारे हो करके प्यारे बनो। और न्यारा देह मान से जो जितना है, उतना वो सबका प्यारा अपने आप बन जाएगा। बाबा का प्यार उसको मिलने लगेगा और आपस में भी हमारा सच्चा और रूहानी प्यार हो जाएगा। इसलिए बाबा ने इस संगम पर ये संबंधों का विज्ञान हम सबको सिखाया है कि आत्मिक प्यार रख करके सबके साथ न्यारे और सबसे प्यारे बन करके रहो, बहुत अच्छी जीवन रहेगी। नहीं तो बहुत प्यारा लगेगा तो उसके बिना हम रह नहीं सकेंगे। यही टीचर मुझे चाहिए, यही स्थान मुझे चाहिए, प्यार हो गया उसे, फंस गए। नहीं तो न्यारे भी हैं प्यारे भी हैं, जो पार्ट जिसके साथ है बैलेंस से बजा रहे हैं। एक और बात अंदर लाइन है, कोमल नहीं बनना है, भावुक नहीं बनना है, लेकिन भावना प्रधान जरूर बनना है। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो भावुक आत्माएं होती है ना, वो बह जाती हैं किसी के पीछे पीछे, उनको पता नहीं चलता है मेरा क्या नुकसान हो जाएगा, भावुक भावना में बह रहे हैं। जैसे आजकल नहीं, गुरुओं के पीछे लोग बह जाते हैं, इतनी भावना, इतनी भावना, यही भगवान है, और थोड़े समय के बाद देखो तो भगवान क्या कर रहा है, कौन से कर्म कर रहा है। बह गए, उसके पीछे पैसा भी लुटा दिया, इज्जत भी लुटा दी। किसी देहधारी के पीछे इतना भावुक नहीं बन जाए जो हमारे पैसे को भी लूट जाए, हमारे चरित्र को भी लूट जाए। कोई कितना भी चमत्कारिक हो, कोई कितनी भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त व्यक्ति क्यों ना हो, वो सब क्षण भंगुर अल्प काल का है। ये सब बहुत पक्का कर ले, नहीं तो अधिकतर देखा जाता आजकल की दुनिया में लोग चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। चमत्कार को नमस्कार, थोड़ा सा कोई ने कुछ दिखा दिया, भभूत दे दी, उसकी तबीयत ठीक हो गई, बस उसके पीछे पीछे लग गए। अब वो भभूत दे करके आपको लूट ले जाएगा ये पता ही नहीं आपको। इसलिए बहुत ध्यान रखना कि ऐसे भावुक किसी के पीछे नहीं बनना। अल्पज्ञ आत्माएं, सर्वज्ञ तो कोई भी नहीं है, मुझे क्या देंगी। जब बाबा मुझे मिल गया, सर्वशक्तिवान बाबा का हमारा साथ है, तो इन अल्पज्ञ आत्माओं के क्षण भंगुर सिद्धि सिद्धि के प्रभाव में मैं आत्मा क्यों आऊं। कोई ऐसे हाथ किया नोटे निकाल दी, कोई ऐसे हाथ किया अंगूठी निकाल दी, कोई ने कोई चमत्कार दे, ये तो बड़ा सिद्ध पुरुष है, इसने तुम्हारी बीमारी ठीक कर दी, इसने तो मेरा ये बंधन काट दिया, और मैं तो अभी तक बाबा का योग लगाते लगाते थक गई, फिर भी ये बीमारी नहीं ठीक हुई। फिर बाबा में भी शक पैदा कर लेते, सर्वशक्तिमान में भी शक पैदा कर लेते, ज्ञान में भी संशय आ जाता। इसलिए ध्यान देना, जितनी भी आत्माएं हैं अल्पज्ञ हैं, सर्वज्ञ नहीं है। और मुझे किसी के साथ इतना नहीं अटक जाना है, लटक जाना, जो उस भावना के पीछे मैं बह जाऊं। इसलिए भावनाएं आवश्यक हैं, होनी चाहिए, लेकिन भावुक नहीं बनना है। चेहरा सदा हर्षित रहे, प्रसन्न चित रहे, कोई भी दृश्य देख करके मन के अंदर किसी भी प्रकार की उलझन वाले प्रश्नों को उठाने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रसन्नचित्त स्थिति में रहना है, खुशनुमा स्थिति में रहना है, सदा हर्षित रहना है, तो बाबा हम सबको कहते हैं प्रश्नों से पार चले जाओ। हर सीन में कोई न कोई राज है, कोई कल्याण है, कोई रहस्य भरा हुआ है, इसलिए मुझे अपने को हलचल में नहीं लाना है। हलचल में आने वाली आत्माएं भी प्योरिटी को ग्रहण नहीं कर सकते। ये बहुत गहरी परिभाषा है पवित्रता की। इसलिए हम सब इन सब छोटी छोटी बातों को जिन पर रोशनी डाली, आप ध्यान रखना, ये हमारे लिए बाबा ने मर्यादाओं की लकीर बनाई है, इसी के अंदर रहना है मुझे। और इसको अगर पालन करेंगे, फॉलो करेंगे, तो जिस लक्ष्य की ओर हम बढ़ना चाहते हैं, जो दादियां कह रही हैं, बाबा कह रहे हैं, हे ब्राह्मण तुम्हें फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बनने के बाद तुम देवता बनोगे, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन सब बातों को, इन मर्यादाओं को, इन नियमों को, ईश्वरीय दिनचर्या को यथार्थ रीति से पालन करने वाली आत्मा लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, पहले हम देखें अपने आप को, सच्चा पक्का ब्राह्मण हूँ, पवित्र स्वच्छ निर्मल ब्राह्मण हूँ, जिसमें ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, लगाव नहीं है, जिद्द नहीं है, सिद्ध नहीं है, आवेश नहीं है, आवेग नहीं है, ऐसी मैं पवित्र आत्मा हूँ। अगर कोई भी सूक्ष्म में है तो दिल शिकस्त नहीं हो जाना। कई बार बहुत जल्दी जल्दी छोटी दिल कर लेते, मेरे में ये सब कुछ है, अब मैं क्या करूं। बाबा कहता जो कुछ तुम्हारे पास है तुम पहले चेक करो, फिर मुझे अर्पित करो, मैं चेंज करके दे दूंगा तुमको। तो जो कुछ भी है मान लो, तो एकांत में बैठ करके चेक करना यहाँ पर, और चेक करके अगर कोई ऐसी कमी कमजोरी आपके स्वभाव संस्कार के अनुसार आपको रुकावट डाल रही है, विघ्न रूप बनी हुई है, तो बहुत सच्चे मन से बाबा को लिखना और बाबा से संकल्प लेना, बाबा ये सब आप ले लो और मुझे आप अपना वरदान दे करके मुक्त कर दो। ठीक है, तो इस भट्टी के अंदर ऐसी दृढ़ता की तपस्या करके बाबा के मिले हुए लक्ष्य को हम सबको प्राप्त करना है। जो लक्ष्य दिया है बाबा ने, उस लक्ष्य को वरना है। बाबा ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी संदेश में, आपका संपूर्ण स्वरूप आप बच्चों का आवाहन कर रहा है, ये साकारी स्वरूप पुरुषार्थी है और वो वरमाला लेकर के संपूर्ण स्वरूप खड़ा है कि हे आत्मा अब फिर से तुम आ जाओ मुझे वरने के लिए, मैं तुमको वरने के लिए खड़ा हूं। तो हम सब अगर संपूर्णता का पुरुषार्थ करें तो ब्राह्मण सच्चे पक्के पवित्र और योगी बनकर अपनी संपूर्णता को वर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा ने वर लिया, हमारी कई दादियों ने वर लिया, अभी हम सबका नंबर है कि हम सब ऐसा पुरुषार्थ करके अपने ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त करें और फिर देवता में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, ओम शांति।